مظلوم حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. حضرات، اس وقت کی ہماری گفتگو کا موضوع اہل حرم کی کربلا سے کوفے کی طرف روانگی ہے. 10 محرم، عصر عاشور، وہ موقع تھا کہ جہاں اہل حرم بالکل بے سر و سامان ہو گئے تھے، ان کے سروں سے چادریں تک چھین لی گئی تھیں، خیمے جلا دیے گئے تھے، شام غریباں آ چکی تھی. صبح 11 محرم جب نمودار ہوئی، ظاہر ہے کہ اہل حرم کے لیے یہ ایک سخت صبح تھی، لیکن اسی وقت یہ پیغام سر سعد کی طرف سے آیا کہ اب اہل حرم کو کوفے کی طرف جانا ہوگا، ابن زیاد نے طلب کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ انتہائی سخت مرحلہ تھا، لیکن شہزادی جناب زینب، جن کو مولا امام حسین علیہ السلام نے یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ اس مشن کو آگے بڑھائیں گی، جناب زینب نے تمام بیویوں کو تیار کیا اور کربلا سے یہ قافلہ 11 محرم کو چلا. اس عالم میں کہ جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ ملائین آئے اور میرے بھائی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے نیچے سے بستر کھینچ لیا، کہ جو بیماری اور غش کے عالم میں تھے، اور ان کے ہاتھوں میں فولاد کی ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں، بیڑیاں پہنا دی گئیں، گلے میں توق ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد اہل حرم کو رسیوں کے اندر باندھ دیا گیا. جناب سید سجاد آگے آگے ہیں، اونٹ لائے گئے، اونٹ بے کجاوا تھے، ان کے اوپر بیویوں کو سوار کیا گیا، رسیوں میں بندھی ہوئی بیویاں، اور اس طرح سے یہ قافلہ چلا. ملائین نے اس قافلے کا جو روٹ اختیار کیا، وہ اس طرف سے انہوں نے اس قافلے کو نکالا کہ جہاں شہداء کی لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے. امام زین العابدین علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ کو اس قدر شدید تکلیف ہوئی کہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ ابھی روح قفص انصری سے پرواز کر جائے گی، لیکن جناب زینب نے آگے بڑھ کر ان کو دلاسہ اور تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے اور اس مقام کے اوپر امام حسین کی ایک یادگار بنے گی. یہ قافلہ یہاں سے کوفے کی طرف روانہ ہوا، اور آج تو ظاہر ہے کہ صرف 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کی مسافت ہے، لیکن اس زمانے کے اندر حالات اس قدر خراب تھے، راستے اتنے خراب تھے، اور جو عرب کا جو کلائمیٹ ہے وہ کلائمیٹ اس طرح کا ہے کہ دن میں شدید دھوپ پڑتی ہے، شدید گرمی ہوتی ہے، رات کو ٹھنڈ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پتھر چٹکتے ہیں اور چٹک کر اتنے نوکیلے اور دھاردار ہو جاتے ہیں جس طرح سے کہ تلوار کی دھار ہوتی ہے. ایسے راستوں سے اس قافلے کو گزارا گیا، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے پیروں کے اندر جو بیڑی تھی، اس بیڑی کے ساتھ ہی امام باقر جو چھوٹے سے بچے تھے، اس وقت میں 4 یا 5 سال کا آپ کا سن تھا، آپ کا پیر بھی اس بیڑی کے اندر باندھ دیا گیا، اور اس طرح سے یہ قافلہ چلا. 12 محرم کی رات میں یہ قافلہ کوفہ پہنچا، لیکن یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت تک شہر کے دروازے بند ہو چکے تھے، ابن زیاد کا محل بند ہو گیا تھا، لہذا حکم دیا گیا کہ یہیں پر ٹھہرایا جائے گا قافلے کو. قافلہ ٹھہرا دیا گیا. صبح ابن زیاد کو بتایا گیا کہ اہل حرم لائے گئے ہیں، تو اس نے یہ حکم دیا کہ بازاروں کی آئینہ بندی کی جائے، بازار سجائے جائیں، ندا دی جائے، منادی بھیجے جائیں، چاروں طرف بتایا جائے کہ ایک خارجی نے خروج کیا تھا، اس کے اوپر مسلمانوں نے فتح پائی ہے اور اس کے اہل حرم کو قید کر کے لایا گیا ہے. اب آپ حالات کی نزاکت کو دیکھیے کہ جو مشن تھا امام حسین علیہ السلام کا، وہ مشن اس مقام کے اوپر ختم ہو رہا ہے. جو پروپیگنڈا حکومت کر رہی ہے اور پوری طاقت کے ساتھ پوری حکومت کی جتنی مشینری تھی وہ اس بات پر لگا دی گئی کہ ہر جگہ یہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ خارجی نے خروج کیا تھا، بغاوت کی گئی تھی حکومت کے خلاف اور اس باغی کے اوپر قبضہ پایا گیا ہے. تو یہ اگر یہاں توڑ نہ ہو اس پروپیگنڈے کا، تو امام حسین علیہ السلام کی ساری قربانیاں رائے گاہ ہو جائیں. अब ये वो मकाम है, ये वो मंजिल है कि इस मंजिल के ऊपर अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ बचानी हैं तो जिम्मेदारों को सामने आना पड़ेगा। इस काफिले के अंदर सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, जनाब ज़ैनब हैं, जनाब उम्मे कुलसूम हैं। ये तीन बड़े जिम्मेदार थे कि जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि इस प्रोपेगंडे को जो हुकूमत कर रही है उस प्रोपेगंडे का तोड़ पेश करें। चुनाचे आईना बंदी कर दी गई। अब आप गौर फरमाइए कि ये कूफा वो मकाम है कि जहाँ पर जनाब ज़ैनब बहैसियत शहजादी के रह चुकी हैं, जनाब उम्मे कुलसूम बहैसियत शहजादी के रह चुकी हैं, इसलिए कि मौलाए कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब के दौर खिलाफत में दारुल खुलाफा जो था वो कूफा था और कूफे की शहजादियों की हैसियत थी जनाब ज़ैनब की। अब अंदाज़ा लगाइए कि कितनी सख्त मंजिल है कि उसी कूफे में रसन बस्ता जनाब ज़ैनब लाई जा रही हैं, जनाब उम्मे कुलसूम लाई जा रही हैं। बहरहाल हुकूमत की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए कि असलियत सामने ना आने पाए, चुनाचे ये तशहीर की गई, तमाशाई बाकायदा जमा किए गए ताकि लोगों को असल हकीकत मालूम न हो सके। लोगों में योम ईद करार दिया गया, नए कपड़े पहनकर लोग आए। जनाबे ज़ैनब ने जब यह हालात देखे तो जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, जनाबे सैयद सज्जाद, जनाबे उम्मे कुलसूम, इन तीनों के खुतबात हैं जो मकातिल के अंदर और तारीख के अंदर मौजूद हैं कि जो उन्होंने कूफे के अंदर दिए हैं। और यहाँ पर जनाबे ज़ैनब के कूफे खास, कूफे में जनाबे ज़ैनब के जो खुतबे हैं वो खास अहमियत रखते हैं, इसलिए कि आप रसन बस्ता थीं और ऊँट की पुश्त के ऊपर बैठी हुई थीं, और जब ये तारुफ कराया जा रहा था कि ये एक बागी के अहले हरम हैं तब आपने असलियत को पेश करना ज़रूरी समझा, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे भी थे कूफे के जो आपको पहचानने लगे थे। मसलन एक बीवी ने आपको लाके कुछ चादरें दी पहचानने के बाद, कुछ असहाब थे कि जिन्होंने आपको पहचाना, लिहाजा आपने इस मौके को मुनासिब समझकर एक मरतबा इशारा किया कि सब लोग खामोश हो जाएं, सब लोग खामोश हो गए। उसके बाद आपने खुतबा देना शुरू किया। आपका खुतबा लहजे के एतबार से हजरत अली के लहजे से मिलता था कि जो विरासतन आपको लहजा मिला था, अंदाज के एतबार से आपका अंदाज हजरत अली वाला अंदाज था, लेकिन मतन के हिसाब से आपका खुतबा जनाबे फातिमा के उस खुतबे से बहुत करीब था कि जो अपने हक के सिलसिले में, हक के मिल्कियत के सिलसिले में आपने दरबार में दिया था। आपने अपने नाना के जरिए से अपने को पहचानवाया और ये बताया कि हमारा खानावदा क्या है, और आपने बताया कि लोगो तुम पहचानो हकीकत क्या है, ए लोगो तुमने खत लिख के मेरे भाई को बुलाया, तुम्हारी दावत के ऊपर मेरा भाई आया और तुमने ये सलूक किया, तुमने उसको कत्ल कर दिया कि जिसे रसूलुल्लाह अपने कंधे के ऊपर सवार कराते थे, तुमने उसको कत्ल किया है कि जिसे रसूलुल्लाह अपनी गोदों में खिलाया करते थे, तुमने उसे कत्ल किया है कि जिसे देखकर रसूल खुश हुआ करते थे, तुमने उसे कत्ल किया है कि जिसे खून की ये चश्म कहते थे पैगंबर, तुमने उसे कत्ल किया है कि जिसे अपना जिगर गोशा कहते थे पैगंबर। जनाबे ज़ैनब के इन खुतबों से एक अजीब व गरीब माहौल पैदा हो गया, लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगे। तो जनाबे ज़ैनब ने कहा कि अब तुम रोते हो लेकिन इस रोने से अब तुम्हें कोई फायदा नहीं हो सकता, इसलिए कि तुम वो काम कर चुके हो कि जिसकी अब कोई तलाफी नहीं हो सकती। ये जनाबे ज़ैनब अपना तारुफ पेश कर रही हैं ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो कुर्बानी बची रह जाए और सही तस्वीर सामने आए। नतीजा ये हुआ कि हुकूमत जो पूरे शद्दोमद से प्रोपेगेंडा कर रही थी, हुकूमत की पूरी मशीनरी जहां पर सर्फ हो रही थी, वो हुकूमत की तमाम मशीनरी जहां ताकत के साथ में ये तशहीर कर रही थी कि ये एक बागी है, लोगों की समझ में ये हकीकत आने लगी कि ये कोई बागी नहीं है बल्कि हुकूमत ने बगावत की है हमारे पैगंबर के हमारे पैगंबर के साथ, और ये कयामत की है कि उनके अहले हरम को कैद करके लाए हैं। चुनाचे आप बाआवाज़ बुलंद खुतबा दे रही थीं, हालांकि ये आपके लिए बड़े इम्तहान की मंजिल थी कि वो कूफा के जहाँ की आप शहजादी रही थीं, वो जनाबे ज़ैनब के जो कभी बेपर्दा नहीं निकली थीं, आपके सर के ऊपर चादर भी नहीं थी, बालों से अपना चेहरा छुपाए हुई थीं, लेकिन हालात के पेश नजर इस वक्त आपकी जो जिम्मेदारी थी, यहाँ पर जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के भी खुतबे मौजूद हैं, हज़रत उम्मे कुलसूम के भी खुतबे मौजूद हैं, लेकिन जनाब ज़ैनब ने सही सूरत हाल को सबसे पहले कंट्रोल किया और आपने वो हालात पैदा किए कि लोग जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन और जनाब उम्मे कुलसूम की बात सुन सकें। तो आपने शदीद तरीन ज़र्ब लगाई है हुकूमत के ऊपर अपने खुतबों से कूफे में, और ये आपने जो लबो लहजा इख्तियार किया वो लबो लहजा था जो मौलाए कायनात का था, वो विरासतन भी आपको मिला हुआ था, वही अंदाज था, वही अंदाज गुफ्तगू था, वही बलागत थी आपके लहजे के अंदर और आपके कलाम के अंदर। चुनांचे जब ये आवाज़ बुलंद हुई तो आउटर कूफा में पहुंची, आउटर कूफा में हजरत अब्दुल्ला इब्ने आफीफ पैगंबर इस्लाम के एक नाबीना साहबी थे, उन्होंने यह आवाज़ सुनी, बिस्तर अलालत के ऊपर थे, फ़कत आपकी एक बेटी थी वही आपकी तीमारदारी किया करती थी। एक मर्तबा ये जो आवाज़ सुनी तो मुस्तरिब हो गए, बेचैनी के साथ बिस्तर के ऊपर बैठे और कहा कि बेटी क्या कयामत आ गई? तो बेटी ने कहा कि बाबा आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या हुआ? कहा कि मेरे कानों के अंदर अली की बोलने की आवाज़ आ रही है, मेरे कानों के अंदर अली का लहजा आ रहा है, कोई तकरीर कर रहा है। तो बेटी ने कहा कि नहीं बाबा, ये अली तकरीर नहीं कर रहे हैं बल्कि कुछ अहले हरम लाए गए हैं किसी के, कहा यह जा रहा है कि बगावत की थी किसी ने हुकूमत से, उसके अहले हरम हैं जो लाए गए हैं, लिहाजा उनको लेके यहाँ पर आया गया है। तो जनाबे ज़ैनब ने तो उस वक्त ये जो जनाबे अब्दुल्ला इब्ने आफीफ थे, इन्होंने बेटी से कहा कि बेटा मुझे तुम लेके चलो, बीमार थे लेकिन बेटी उनका हाथ पकड़ कर लेकर आई, और लाकर जाहिर है कि एक जम गफीर था, तमाशाई जमा थे, उसने चारों तरफ देखा और देखने के बाद में कहा कि बाबा आप तो ये कह रहे थे कि अली के बोलने की आवाज़ आ रही है, अली के तकरीर करने की आवाज़ आ रही है, ये तो कोई बीवी हैं कि जो ऊँट के ऊपर बैठी हुई हैं, इनके सर के ऊपर चादर भी नहीं है और ये कैदी बनी हुई हैं, इनके हाथों में रस्सियाँ हैं। तो आपने कहा कि क्या कोई तुम्हें मर्द भी इस काफिले के अंदर नज़र आ रहा है? तो उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाने के बाद में कहा कि हाँ, सबसे आगे एक मर्द है कि जिसके हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं, गले में तौक है, सर झुकाए हुए खड़ा है। कहा कि मुझे उस नौजवान तक लेके चलो। चुनांचे अब्दुल्ला इब्ने आफीफ को उनकी बेटी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास लेके आई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने आफीफ ने कहा, अस्सलामु अलैका या शेख, ए शख्स आपके ऊपर मेरा सलाम। हजरत इमाम आली मकाम ने सर उठाया, अब्दुल्ला इब्ने आफीफ को देखा, सर को झुका लिया और पलट कर जवाब दिया कि ए इब्ने आफीफ, तुम पर भी हमारा सलाम। अब जो इब्ने आफीफ ने इमाम की ज़बान से अपना नाम सुना तो एक मरतबा उनकी घबराहट के अंदर और ज़्यादा इजाफा हुआ और उन्होंने कहा कि क्या ए कैदी तुम मुझे जानते हो? तो आपने फरमाया कि हाँ इब्ने आफीफ, हम तुम्हें जानते हैं और तुम भी हमें जानते हो। इब्ने आफीफ और ज़्यादा घबराए, कहा कि लिल्लाह, मुझे बताइए कि आप कौन हैं, पूरा तारुफ कराइए। इमाम आली मकाम ने कहा कि इब्ने आफीफ, तुम मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब से वाकिफ हो? कहा कि यकीनन मैं उनके दर का गुलाम हूँ। कहा कि तुम उनके बेटे हुसैन इब्ने अली से वाकिफ हो? कहा यकीनन मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत का कायल हूँ, मैं उनसे ताल्लुक़ रखता हूँ, उनसे अकीदत रखता हूँ। कहा कि अली इब्नुल हुसैन, हुसैन का बेटा तुम्हारे सामने जंजीरों में जकड़ा हुआ खड़ा है। वही सुनना था कि एक मरतबा इब्ने आफीफ चीखें मार कर रोने लगे और कहा कि ख़ानदान रसालत के ऊपर ये वक्त कैसे आ गया, किस जुर्म में आ गया? मैंने तो ये तारुफ करते हुए सुना है कि एक बागी ने बगावत की थी। कहा कि इब्ने आफीफ, हमारे ऊपर जुल्म हो गया, हाँ जद्दे अमजद को प्यासा जानवर की तरह ज़बह कर दिया गया। बस ये सुनना था कि इब्ने आफीफ ने सर से अमामा उतार दिया, फेंक दिया और पलट कर कहा कि ये जो बीवियां हैं ये मुखद्दरात इस्मत कौन हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि इब्ने आफीफ, इनमें अली की बेटियां हैं, ज़ैनब हैं, उम्मे कुलसूम हैं। अब जो ये सुनना था तो एक मरतबा मुँह को पीटने लगे इब्ने आफीफ, फौरन सजदे के अंदर सर रखा और सजदे शुक्र किया और उसके बाद सर उठाकर कहा कि मौला, मेरी एक आंख जंग जमल में चली गई थी, तीर लग गया था, एक आंख जंग सफीन में चली गई थी, तो मैंने हजरत अली से शिकवा किया था कि मैं नाबीना हो गया, अब मैं अपनी ज़िंदगी के दिन कैसे गुजारूंगा, मेरा तो एक मताए हयात सिर्फ एक बेटी ही है। तो मेरे मौला ने तसल्ली देते हुए कहा था कि इब्ने अफीफ, एक वक्त वो आएगा कि तुम इस नाबीना होने के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। कहा इब्ने अफीफ ने कि मेरे मौला, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं पहले नाबीना हो गया और मेरी आंखों ने अली की बेटियों को बेपर्दा नहीं देखा। ये वो कूफे का बाजार है कि जहां जैनब ने, जनाबे इमाम सज्जाद ने और जनाबे उम्मे कुलसूम ने भरपूर तरह से हुकूमत के प्रोपेगंडे को रद्द किया अपने खुतबों से, और सही करबला की सूरत हाल को पेश किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का तहफ्फुज़ किया।
हाय।